8 June 1978.
भद्रम पश्ये माक्षे धीर्य जत्रा स्थिरंगष्टवाग्वं सस्तनो भिर्जसे मही देवहितं यदायुः। ज्ञान कर्म और उपासना, उपासना का विषय बहुत दिनों से चल रहा है। हम परमात्मा के बहुत समीपवर्ती होना चाहते हैं, उसके समीप में बैठना चाहते हैं। उप आसन, उप कहते समीप, आसन माने बैठना, तो उपासना हो जाती है। तो अनेक गुणों के द्वारा हम इसका वर्णन करते हैं, ये उपासना है। किसी को माध्यम बनाकर, मन को बुद्धि को इनको ही माध्यम बनाकर हम उसके पास जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कई दिन मस्तिष्क में बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा आत्म प्रत्यक्ष की बात चलती रही। ये चार क्लासें हमने बनाई हुई हैं। पहली क्लास, जैसी सोसाइटी में मनुष्य बैठता है वैसी विचारधारा उसको वहां से मिलती है, वैसे संस्कार वहां से मिलते हैं। यदि एक शराबियों की सोसाइटी में कोई व्यक्ति बैठेगा उसको वैसी आदत, वैसे स्वभाव, वैसे विचार वहां से मिलेंगे। एक जुआ खेलने वालों की सोसाइटी में बैठेगा उसको भी वैसी आदतें पड़ जाएंगी। तो हम परमात्मा की सोसाइटी में, परमात्मा के पास बैठना चाहते हैं। तो अब जैसा परमात्मा है वैसे ही हम भी बनना चाहते हैं। परमात्मा निर्विकार है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, निष्क्रिय है, निराकार है, निरवैध है, अव्यक्त है। अनेक गुणों से हम उसका वर्णन करते हैं। तो निर्गुण होते हुए भी हम उसमें गुणों का आरोप करते हैं, उसके जानने के लिए, समझने के लिए। तो जैसा वो निर्विकार है उसके समीप में बैठ कर उसकी उपासना करते हुए हम भी निर्विकार हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। जैसे सारे संसार का संचालन करते हुए उसमें कोई अभिमान नहीं है, कोई बात देखने में नहीं आती, इसी प्रकार आप भी सब लोग के व्यवहार करते हुए आप में भी अभिमान की मात्रा का, अहंता का अभाव हो जाएगा और आप तदरूप बन जाएगा। वासना में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा भी सूक्ष्म है। जब प्राण को हम माध्यम बनाते हैं तो प्राण के अंदर भी, प्राण क्या चीज है, ये जो आकाश मंडल में वायु विचरती है इसी का ही कार्य विशेष प्राण है। ये पंचभूतों में वायु भूत है, ये वायु भूत हमारे शरीर में सहकारी उपादान कारण होकर प्राण के रूप में परिणित हुआ। तो इसमें भी स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर आदि के भेद हो जाते हैं। हरेक पदार्थ में स्थूलता सूक्ष्मता होती है कारण कार्य भेद से। तो सबसे स्थूल प्राण जो है वो मूलाधार में स्थिर है, क्योंकि मूलाधार जो है स्वभावी की इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। यहीं से मलमूत्र आदि, पृथ्वी के विकार आदि नीचे से निकलते हैं। तो यहाँ की वायु का प्राय नीचे को गमन होता है, यहाँ से प्राण वायु ऊर्ध्वगमन करती है और यहाँ से, तो इसीलिए स्थान भेद से प्राण के भेद हो गए हैं। तो मूलाधार का जो प्राण है ये नीचे के नाभि से लेकर के नीचे के क्या क्या कार्य ये करता है, जैसे पेशाब का फेंकना, टट्टी का फेंकना, रजवीर्य का फेंकना, वायु का फेंकना, इस प्रकार सारे नीचे के व्यवहार करता है, इसका नीचे को गमन होता है। तो नीचे को गमन इसलिए होता है कि और प्राणों की अपेक्षा इसमें गुरुत्व है, भारीपन है, भारी चीज जो होती है वो नीचे को गिरा करती है। इसलिए यहाँ का प्राण जो है और प्राणों की अपेक्षा कुछ ग्रुप लिए हुए है, कुछ खाली पर लिए हुए है, इसलिए उसका प्रेशर नीचे को होता है। वास्तविक में जीवन का आधार है, जब ये विकृत हो जाता नीचे का प्राण, तो नीचे का फालिज आदि अधरंग आदि बीमारियां हो जाया करती है, नीचे का भाग कार्य करना बंद कर देता है। तो जब ये विकार भाव को अपान प्राप्त हो जाता है, और जब ये ठीक रहता है हमारे शरीर के अंदर, वीर्य का निर्माण करता है, रज का निर्माण करता है, गर्भस्थ बालक का पालन पोषण रक्षण करता है, और सारी व्यवस्था मलमूत्र आदि भी यहाँ इनके पाकज आदि कार्य कराने में सहयोगी होता है। तो इसलिए प्रधान रूप से जीवन का आधार ये भाग बना हुआ है, प्राण अपान प्राण होते हुए भी तो इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी तत्व इसके साथ मिला हुआ होने से इसमें थोड़ा गुरुत्व बन आ गया है, तो इसीलिए ये जो मल आदि है ये पृथ्वी के ही भाग विशेष है, अंश विशेष है, इसीलिए यहाँ गुरुत्व रूप धर्म बन गया है इस अपान प्राण के अंदर भी। तो इसकी सारी व्यवस्थाओं को, सारे कार्यों को ध्यान की दिव्य दृष्टि से अभ्यास के द्वारा समझना चाहिए कि ये प्राण किस प्रकार यहाँ कार्य कर रहा है, क्या इसके गर्भ में और भी कोई चेतन सत्ता है। यहाँ भी चेतन सत्ता का इसमें आभास हो सकता है, समझ में आ सकता है, क्योंकि बिना चेतन सत्ता के ये भी कार्यशील नहीं होता। भले ही प्राण का स्वाभाविक धर्म गमन करना है, चलना है, पर गमन करने के लिए भी कोई प्रेरक होना चाहिए। अग्नि में, विद्युत में, दहार प्रकाश आदि स्वाभाविक धर्म है, तो स्वाभाविक धर्मों को प्रकट करने के लिए भी कोई चेतन सत्ता होनी चाहिए। बिना चेतन सत्ता के स्वाभाविक धर्म भी प्रकट नहीं होते। तो इसलिए बिना चेतन सत्ता के ये मूलाधार का प्राण भी गतिशील नहीं होता, इसमें चेतन सत्ता का साक्षात्कार हो सकता है यदि अभ्यास किया जाए तो। जितने भी कार्य होते हैं, जैसे पाकच धर्म भी यहाँ होता है, रज का, पीरिय का, पेशाब का, मल का, मूत्र आदि का पाक होता है, ये तो इनमें यहाँ गति का हेतु, हालांकि पाक रूप धर्म अग्नि का है, पर अग्नि को भी गति देने वाला प्राण ही है। अगर प्राण अपना कार्य बंद कर देता है तो अग्नि भी गतिशील नहीं होगी। तो इसलिए ये प्राण ही सब कार्य यहाँ कर रहा है। अब जल का भी भाग है, जैसे मूत्र आदि यहाँ से तो आप बाहर निकलते हैं, तो इसको भी गतिशील करने वाला ये प्राण ही है। तो बिना प्राण के शरीर का कोई भी कार्य या व्यवहार नहीं चल सकता। तो इसलिए यहाँ प्राण का अध्ययन करना चाहिए, प्राण को उपासना का विषय बनाना चाहिए। इस देश में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार गर्भाशय में कैसे ये प्राण काम करता है, गुर्दों में मूत्र के निर्माण का कैसे कार्य करता है, बड़ी आंत में किस प्रकार ये मल का वहन आदि कार्य करता है, तो इन सब कार्यों का, यहाँ जो अपान के कार्य हो रहे इस देश के अंदर, इन सब कार्यों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए कि इसके क्या क्या कार्य हैं। अगर और कुछ दृष्टि सूक्ष्म सी हो जाए तो इसमें चेतना का भी आभास हो सकेगा। अगर यहाँ चेतना की, सर्वव्यापक चेतन परमात्मा की यहाँ प्रतीति नहीं होती, तो फिर हम आगे दूसरे प्राण में चलेंगे जो इससे भी जरा कुछ सूक्ष्म है। तो भी एक प्रकार से वायु गतिशील करता है, जहाँ से जिन पदार्थों में से वायु निकाल नहीं जाती है तो वहाँ शब्द का गमन नहीं होता। शब्द एक प्रकार से वायु को घोड़ा बना करके इस पर बहन करता, चलता है, जैसे हम हवाई जहाज पर बैठ कर चलते हैं, तो शब्द भी वायु के ऊपर, प्राण के ऊपर बैठ करके चलता है। तो शब्दों का वाहन भी प्राण करता है, और अग्नि का वाहन भी प्राण करता है। तो यहाँ का जो प्राण है ये शब्द, इसलिए यहाँ जब कुंडलिनी उत्थान होता, अभ्यासी कुंडलिनी को जागृत करता है, तो वो प्राण के द्वारा ही ऊर्ध्वगमन किया करती है, बिना प्राण के उसका ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ। यद्यपि अग्नि में स्वाभाविक धर्म ऊर्ध्वभाग है, अग्नि को जब हम यहाँ जमीन पर लकड़ी जलाते हैं तो ऊपर को चलती है, पर वो ऊपर को भी तब चलेगी यदि वायु वहां होगी, इसको कार्य देगी। आप किसी बंद बोतल में दीपक रख दो फौरन बुझ जाएगा, क्योंकि वहां प्राण का वायु का अभाव होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अग्नि को भी गतिशील करने वाला प्राण ही है, वायु ही है, और शब्द को भी गतिशील करने वाला प्राण ही है, वायु ही है, और जल को भी गतिशील करने वाला प्राण ही है, वायु है, और पृथ्वी को भी चलाने वाला वायु है, या शरीर में जो पृथ्वी का भाग है इसमें भी गतिशील होने वाला प्राण है। तो एक प्रकार से ये प्राण हमारे शरीर के जीवन का आधार है। तो मूलाधार में स्थित जो प्राण है इसको ही उपासना का विषय बनाना चाहिए। इसके द्वारा ही, प्राण के द्वारा ही परमात्मा की खोज करनी चाहिए या आत्मा की खोज करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात रूप से तो हम परमात्मा को देख नहीं सकेंगे बिना किसी माध्यम के। इस आकाश को भी नहीं देख सकते बिना हम आंख के माध्यम के या हाथ के माध्यम के। सो ये परमात्मा को जानने के लिए कुछ साधन, कोई माध्यम, कोई तरीका, कोई बीच की चीज बनानी पड़ेगी ताकि हम उसका स्पर्श कर सकें। तो प्राण के द्वारा भी चेतन के स्पर्श की अनुभूति होती है, प्राण के द्वारा भी आत्मा के स्पर्श की अनुभूति होती है। जब हम हृदय देश में अभ्यास करते हैं, जिस चित्त के प्रदेश में प्राण का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव होता है, वहां भी प्राण के द्वारा ही आत्मा के स्पर्श की अनुभूति हुआ करती है या परमात्मा के स्पर्श की अनुभूति हुआ करती है। तो ये प्राण आपको माध्यम बनाना होगा मूलाधार में। तो आज इसके द्वारा ही, इस प्रकार ही इसको उपासना का विषय बनाएं और इसके द्वारा इस देश में सारे कर्म और व्यापार देखें। अगर हो सके तो चेतना की अनुभूति भी इसके स्पर्श के द्वारा मूलाधार में ही करें। प्राण के द्वारा उपासना करने वाले हैं उनको अपने अपने अनुभव बताने होंगे, क्या समझा है इसके विषय में, क्या जाना है, कैसे उपासना की।